सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इतिहासकार डॉक्टर रिजवान कादरी और पत्रकार नीलू रंजन।
आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और 150वीं जयंती को पूरे धूमधाम से मनाया गया है। जो एकता नगर है वहां पे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सरदार पटेल का जो जीवन है, जो उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए किया है, और उन्होंने कहा है कि कैसे ये राष्ट्रीय एकता का ये महापर्व के रूप में है। आज सरदार पटेल की जो राष्ट्रीय एकता को लेकर के जो रियासतों में बटा हुआ भारत था उसको एकजुट करने में उनकी क्या भूमिका रही और भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने में सरदार पटेल किस रूप में देखते थे, उनका योगदान क्या था, इस पे हम बात करेंगे इतिहासकार रिजवान कादरी जी से। रिजवान कादरी जी, आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। तो आपसे ही शुरू करते हैं कि ये जो कहा जा रहा था कि भारत जो है वो एक नहीं होगा और टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा, 550 से अधिक रियासतें थी, वो जो भारत एक हुआ है, एकजुट जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, उसमें सरदार पटेल की क्या भूमिका थी और कैसे उन्होंने किया, उनके योगदान को आप किस रूप में देखते हैं?
सरदार साहब दीर्घ दृष्टा थे, सरदार साहब इतिहास पुरुष थे। जब वे अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी के काउंसिलर थे तो हमेशा पास्ट में से देखते थे और वर्तमान का आयोजन नहीं करते थे और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वे आयोजन करते थे। 1931 में जब वे कराची कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तब उनका जो वक्तव्य था और खास करके स्वराज का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, मगर 1935 से सरदार ने पूरे देश भर में प्रजामंडल मूवमेंट को प्रोत्साहित किया, उसको बढ़ावा दिया और उसी प्रजामंडल मूवमेंट की वजह से प्रिंसली स्टेट में यानी कि हमारी स्वदेशी रियासतों के अंदर लोगों की एक जुड़ाव हुआ और यही प्रेशर ग्रुप जो था वो आजादी के बाद उनका अहम किरदार रहा। 1939 में सरदार इसी प्रजामंडल मूवमेंट के तहत बड़ौदा में जनवरी में गए और बड़ोदरा राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, तब सरदार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसी तरह मई महीने में जब वे भावनगर गए तब वहां पर ये स्वदेशी रियासत के साथ साथ उनके भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, मगर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुस्लिम लीग के लोगों का देखने को मिलता है। इस घटना को करीबन 86 साल हो गए हैं मगर ये सारी चीजें डिटेल में कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। नगीना मस्जिद का केस जो हुआ था उसमें दो लोगों को फांसी की सजा हुई थी, 30 से ज्यादा लोगों को 104 वर्ष के कारावास हुए थे। यानी कि सरदार ने जिस तरह से पहले से ही 1935 से ये प्रजामंडल मूवमेंट का वो किया और उसके माध्यम से उन्होंने कंट्री का उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता था, उनके पास लोगों का एक सीधा कांटेक्ट रहता था, राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद भी लोग उन्हें सीधा संपर्क कर सकते थे, यानी उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल तरीके से जब मिलती है उसे घंटों पहले उनको कार्यकरों के माध्यम से मिल जाता था और इसी वजह से हर प्रिंसली स्टेट के अंदर सरदार का ये प्रेशर ग्रुप बहुत बड़ा अहम किरदार काम कर गया। चाहे हम जूनागढ़ की बात करें, आरजी हुकूमत भी वो लोगों का ही बना हुआ एक प्रेशर ग्रुप था, स्वयं वो लोग जुवान था, और उसी तरह कश्मीर में और हैदराबाद में भी हमको ये चीज देखने को मिलती है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि जो सरदार साहब के मन में जो था एक कि कैसे भारत को बनाना है, आजादी के बाद भारत के सामने जो समस्याएं आएंगी और प्रिंसली स्टेट्स की रियासतों की जो समस्याएं आएंगी उसको सुलझाने के लिए जो रोड मैप है, जो काम है, वो उन्होंने काफी पहले शुरू कर दिया था।
जी हाँ, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले दिनों में हमारा देश हर हाल में आजाद होना ही है। आप उनके 1935 बाद के जितने भी वक्तव्य देखेंगे, चाहे ये 39 का इनके ऊपर जो जानलेवा हमले हुए उस टाइम के भी वक्तव्य देखेंगे तब भी आपको यही बात देखने मिलेगी कि ये देश आजाद होना है और उन्होंने वो राजाओं को भी, स्वदेशी राजाओं को भी उन्होंने खुली चुनौती दी थी, चेतावनी दी थी कि आप सुधरोगे नहीं, आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप ऐसा अच्छा काम करो, उनका जनता का दिल जीत लो, आप उनके साथ प्रेम से बर्ताव करो तो जनता हर हमेशा आपको याद करेगी और यही आपका राजधर्म भी रहेगा।
लेकिन प्रजामंडल का जो एक संगठन तमाम रियासतों में था उसकी भूमिका तो थी ही, लेकिन हम देखते हैं कि 1947 के बाद जो है, जब आजादी के बाद, फिर भी इन रियासतों को मिलाना इतना आसान नहीं था। खासतौर पे जूनागढ़ का और हैदराबाद का तो हमारे सामने है। आप इसको किस रूप में देखते हैं कि सरदार अगर न होते तो शायद ज्यादा मुश्किल हो जाता, और कैसे इन्होंने इस मुश्किल को आसान किया उस वक्त?
सरदार ने अपने साथ ऐसे सारे लोगों को तैयार किया हुआ था। सरदार किसी भी कार्यकर को या किसी भी अफसर को अपने शेप में नहीं ढालते थे। हरेक की शक्तियां होती, हरेक की मर्यादा होती। सरदार हरेक की शक्तियों को परखते थे और उनको फ्री हैंड भी देते थे। उनके साथ काम करने वालों को पूरी छूट भी मिलती थी, पूरा सपोर्ट भी सरदार की तरफ से रहता था। और इसी वजह से सरदार जिस टीम स्पिरिट से पहले से काम करते थे, वही टीम स्पिरिट का नतीजा हमको आजादी के बाद का जो इनका मैक्रो मैनेजमेंट है, ये स्वदेशी राजों को मिलाने का, उसमें हमको स्पष्ट देखने को मिलता है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने 1928 की 13 अप्रैल को इस्तीफा दिया। सवाल था चीफ ऑफिसर का, ईश्वरलाल भगत करके एक बड़े काबिल अफसर थे, इनकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया, बारडोली चले गए। मगर उनको 20 साल के बाद उन्होंने छोटा सा पत्र लिखा, भाई ईश्वरलाल आपकी जरूरियात अभी हैदराबाद में है, आप मुंशी जी की मदद के लिए पहुंच जाइए। यानी सरदार ने नेशन फर्स्ट देखा, जबकि उनके मन में तो कोई उनके लिए ईश्वरलाल के प्रति घृणा या कोई ग्रीवंस नहीं था। तो इसी वजह से हमारा ये जो योगदान था, इसी को हम याद करते हैं।
बिल्कुल सही आपने कहा, और इस पे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने में जो सरदार पटेल की भूमिका थी, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो हम एक बार सुनते हैं।
आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है।
अब जरा ये हमें थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि जूनागढ़ और हैदराबाद में कितनी मुश्किलें थी और कैसे उन मुश्किलों को सरदार पटेल ने पार किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
जूनागढ़ के अंदर ये जो आरजी हुकूमत बनी, वो आजादी के सभी सेनानी थे, वो सारे सेनानी महात्मा गांधी की अहिंसा की जो विचारधारा थी उसी को मानते हुए वो चलते थे। मगर उन्होंने देखा कि जूनागढ़ की करीबन 85% से ज्यादा आबादी हिंदू आबादी है और नवाब मुस्लिम थे, मगर मेरा जो अभ्यास बोलता है कि शाहनवाज भुट्टो जो पहले से ही मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, उनको प्लांट करके जूनागढ़ का दीवान बनाया गया था। नवाब तो कोई जगह पिक्चर में डायरेक्ट तो दिखते ही नहीं है, और उसी ने ये सारा खेल करा था। मगर आरजी हुकूमत का ऐसा प्रेशर खड़ा हुआ, हमारे जो सेनानी थे वो किसी को कोई भी जगह शस्त्र उठाना नहीं पड़ा, नवाब तो भाग गए, उनका बचा हुआ जो दीवान था शाहनवाज भुट्टो, आखिरकार वो भी भाग गया और उनने सामने चल के कहा कि लो हम ये हमारी रियासत सौंप देते हैं। तो ये सारा जो ये आरजी हुकूमत का जो लोगों का एक हुजूम था, लोगों का एक जज्बा था, जुस्सा था, इसी वजह से कोई भी रेजिस्टेंस बिना जूनागढ़ आसानी से मर्ज हो गया। हैदराबाद का निजाम की जो राजनीति थी वो बहुत गंदी थी, वो हिंदुस्तान के बीचों बीच था। तो एक बार मनुबेन गांधी और डॉक्टर सुशीला नायर बैठे थे, तब महात्मा जी ने कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना की कूटनीति को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसका मकसद क्या हैगा। और गांधी जी ने ये भी कहा कि मैं अगर कुछ मेरे पास पावर हो तो मैं बॉम्बे से हमारी नौसेना को भेजो, इधर अमृतसर से हमारी थल सेना जाए और एक ही दिन के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद जीत सकती है। तब उन्हें मजाक में कहा कि बापूजी आप तो वॉर स्ट्रेटेजी भी बनाते होंगे, क्या ऐसा कर सकते हो। तब गांधी जी ने हंसते हुए कहा हाँ मैं जीना की कूटनीति को जानता हो बहुत गंदी गेम खेलता हैगा। उसका मकसद ये है कि जूनागढ़ को वो अपने साथ मर्ज करके हैदराबाद तक का वो जाना चाहता है और ये जो देश आजाद हुआ है उसकी आजादी के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती देना चाहता हैगा। यानी महात्मा गांधी जी भी अगर ऐसी वॉर स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं तो आप सोचे कि हैदराबाद का स्ट्रेटेजिकल क्या इंपॉर्टेंस है। और ऑपरेशन पोलो उसके अंदर सिर्फ 5 दिन ही हुआ था और ये जितने भी रजाकार वगैरह थे जो हैदराबाद निजाम के सपोर्टर थे उनको सरेंडर होना पड़ा था। स्वयं हैदराबाद के निजाम को भी सरेंडर होना पड़ा था, उनको भी सरदार के सामने घुटने टेकने पड़े।
एक नेता के रूप में जिस ढंग से उन्होंने सबको लीड किया, देश को एक किया, सारी रियासतों को मिलाया, निश्चित रूप से वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और प्रधानमंत्री ने इसको याद भी किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सरदार पटेल ने भूमिका निभाई थी।
एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें।
सरदार पटेल से जो प्रेरणा लेते हुए है वो प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे हमें उनसे प्रेरणा लेकर के और एकता के तत्वों को मजबूत करना है। जो कह रहे थे आज प्रधानमंत्री कि देश कहीं ना कहीं सरदार पटेल का जो मार्ग था उसे भटक गया और जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं जो पिछले 75 सालों में देखने को मिली वो क्या है?
सरदार का मार्ग वो तो महात्मा गांधी का ही मार्ग था। महात्मा गांधी के अगर सच्चे कोई अंतेवासी हैं तो वो सरदार पटेल थे। सरदार ने अपनी जिंदगी के अंदर ही अपना मार्ग, अपनी दिशा और अपने उसूलों को दुनिया के सामने रखे थे और हम उससे विचलित क्यों हुए? जैसे कि सरदार के देहांत के बाद हम देखें तो एक स्पर्धा चलती थी कि सरदार का कोई भी जगह योगदान नहीं दर्शाया जाए। सरदार ने जो देश के लिए जो अपना जान फैसानी की है वो नहीं दर्शाया जाए। और बहुत ही बरसों तक, जबकि सरदार तो ऐसे कांग्रेस के लीडर थे, उनका ही सब कुछ माना जाता था। इवन जवाहरलाल नेहरू और सरदार के बीच में वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी पंडित जी इतना ही सरदार को महत्व देते थे, सरदार को इतनी ही इज्जत देते थे जितनी सरदार साहब पंडित जी को भी इतना मान सम्मान और इज्जत देते थे। मगर बाद के लोगों ने जिस तरह से सरदार और सरदार के बेटी मणी बहन और उनके बेटा डाया भाई वो तो अपने बलबूते पे सरदार के देहावसान के बाद राजनीति में आगे बढ़े, पीछे हटे और अपनी रीत से ही उन्होंने अपना करियर बनाया था। उनको कोई जगह सरदार के नाम का यूज करने की जरूरत नहीं, मगर जिस तरह से सरदार की उपेक्षा की गई वो उपेक्षा बहुत खराब थी। और वही उपेक्षा यानी सरदार के मार्ग से विचलित होना, यानी कोई भी जगह सरदार की बात नहीं आना। सरदार तो लॉन्ग टर्म सोचते थे और हर चीज के पीछे उनका कैलकुलेशन होता था। तो ये जो बाद की सरकारों ने जो सरदार की उपेक्षा की, मगर एक बात मुझे खास याद आती है कि जब सरदार साहब की शताब्दी मनाई गई थी तब सब लोग एक होके सरदार को सबने श्रद्धांजलि दी थी। वो चीज हर हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि वो देश के सरदार थे, लोगों के सरदार थे।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने रिजवान कादरी साहब आपने बहुत अच्छे से बताया और खास के आज के यूथ को सरदार साहब ने कैसे एक भारत बनाया, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, एक श्रेष्ठ भारत की नींव रखी। उनके जीवन को, उनके योगदान को आज के युवाओं को, आज के लोगों को याद रखना, समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे थे, आपने उनके जीवन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इतिहासकार डॉक्टर रिजवान कादरी और पत्रकार नीलू रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में